Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये 14वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पांचवें धर्म युद्ध का जिक्र करते हुए कहा था, मंगोल तूफान की तरह इस्लामी सरजमीन पर आए और रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। इतिहास के मुताबिक धर्मों के प्रति मंगोलों के न्यूट्रल होने के ऐलान के बावजूद उन्होंने ईसाइयों के प्रति ज्यादा नरमी दिखाई और दूसरी तरफ मुस्लिम इलाकों पर कब्जा करने के लिए दो हमलावर ग्रुपों के एक होने और कुछ मंगोल शासकों के ईसाई झुकाव की वजह से दोनों ग्रुपों के बीच सहयोग के लिए अवसर प्राप्त हुआ। खास तौर पर मंगोलों के आने से ईसाइयों को एक कहानी याद आई जिसमें उनसे वादा किया गया था कि एक दिन एक व्यक्ति पूरब से उठेगा और पश्चिम के राजाओं की मदद से इस्लाम को खत्म कर देगा और पूरब को ईसाई धर्म के फैलने के लिए तैयार करेगा। ईसाइयों की मंगोलों से बातचीत करने और उन्हें ईसाई धर्म की दावत देने की पहली कोशिश चौथे पोप के दौर में शुरू हुई। 1245 में फ्रांस में ईसाई धार्मिक काउंसिल में लिए गए एक फैसले के मुताबिक और फ्रांस के राजा लुई 9 की मंजूरी से उन्होंने मंगोलिया में ग्रेट खान के दरबार में दो डेलीगेशन भेजे। पहला ग्रुप 15 महीने की यात्रा के बाद मंगोल शाही कैंप पहुंचा। मंगोल गयू खान ने कि जिसके सलाहकारों में कई ईसाई थे पोप के दूतों का अच्छा स्वागत किया, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के लिए पोप का खत पढ़कर वो गुस्से से लाल हो गया। दूसरा डेलीगेशन 1247 में मंगोल जनरल बेचू से मिलने तबरीज पहुंचा। बेचू, जो इसे डेलीगेशन को एक दिलेर और बुरा आदमी लगा, अय्यूबियों के खिलाफ क्रूसेडरों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार था क्योंकि उसकी बगदाद पहुंचने की इच्छा थी और अगर क्रूसेडरों की सेना की मौजूदगी से सीरिया के मुसलमानों का ध्यान भटक जाता तो वो अपना मकसद आसानी से हासिल कर लेता। इसलिए उसने पोप के डेलीगेशन के साथ दो दूत रोम भेजे, लेकिन उस शहर में एक साल बिताने के बाद उन्होंने बताया कि अभी ऐसी कोई संधि मुमकिन नहीं है। इस खबर के बाद दिसंबर 1248 में जब लुई साइप्रस में था तो दो मंगोलों ने खुद को मोसुल में एक मंगोल जनरल का रिप्रेजेंटेटिव बताया और उसे एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि गयू खान को ईसाई धर्म में काफी दिलचस्पी है। लुई ने कि जो इस घटना से बहुत खुश था अपनी तरफ से दो भाइयों को मंगोल दरबार में भेजा जो दोनों अरबी जानते थे। नए धर्म के एक खानाबदोश खान के तौर पर ये दूत एक पोर्टेबल चैपल और कुछ पवित्र निशानियां और दूसरी चीजें तोहफे के तौर पर ले गए, लेकिन इन दूतों के मंगोलिया पहुंचने से पहले ही गयू की मौत हो चुकी थी। लुई के तोहफों को रिजेंट्स ने श्रद्धांजलि माना और वो एक चीज जो दूत लुई के लिए वहां से लाए वो ये थी कि राजा इस काम पर ज्यादा आग्रह न करे। अचानक इस बर्ताव के बावजूद लुई को अब भी उम्मीद थी कि वो एक दिन मंगोलों को ईसाई धर्म में ला सकता है। बेशक अगर पोप और यूरोपियन राजा मंगोलों को ईसाई बनाने के अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दूसरी तरफ मंगोलों को भी उम्मीद थी कि एक दिन वो यूरोप को अपने राज में शामिल कर लेंगे और अपनी जीत पूरी कर सकेंगे। वैसे भी ईसाइयों और मंगोलों के बीच सहयोग की पहली रिपोर्ट हलाकू खान के समय की है। मंगोल हलाकू खान या हुलेगा कि जिसे ईरान जीतने का मिशन मिला था, उसकी माँ और पत्नी ईसाई थी। जिससे उसका झुकाव ईसाइयों की तरफ हो गया और वो मुसलमानों के लिए कट्टर हो गया। नियर ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप में क्रूसेडर्स को भी मंगोलों को ईसाई बनाने का अच्छा मौका मिला। इस मकसद के लिए उन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। क्रूसेडर्स के समकालीन प्रमाणों में इस बात के सबूत हैं कि एक छोटे से इलाके के क्रूसेडर राजा ने हलाकू से संपर्क किया और लेवेंट पर हमला करने और मुसलमानों से यरूशलम छीनकर ईसाइयों को सौंपने का प्लान बनाया। हलाकू खान मार्च 1260 में दमिश्क पर कब्जा करने में कामयाब रहा और फिर अगले हफ्तों में मंगोलों ने बाकी लेवेंट पर जीत हासिल की और उसके बाद से मिस्र का दौर शुरू हुआ। मंगोलों ने मिस्र के शासक कुतुज को धमकाया और उससे सरेंडर करने की मांग की, लेकिन उसने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया और चार मंगोल दूतों को मारकर शहर में चार जगहों पर उनके सिर लटका दिए। मोंग के खान की मौत के बाद उसके भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और हलाकू ने भी लेवेंट छोड़ दिया और पूरा मैनेजमेंट कमांडर केतेबगा को सौंप दिया। हलाकू के साथ कई मंगोल सैनिकों के जाने से लेवेंट में मंगोल फ्रंट कमजोर पड़ गया और दूसरी तरफ कुतुज की सेना मजबूत हो गई, जबकि कमांडरों के एक ग्रुप ने कुतुज को मंगोलों का सामना न करने की चेतावनी दी, जबकि उसने डटकर उनके मुकाबले का इरादा किया और अमीरों से जरूरत के समय जिहाद न छोड़ने को कहा। आखिर में बहादुर मुस्लिम जनरल बेबर्स की कमांड में मुस्लिम सेना और बिद्रा की कमांड में मंगोल सेना जुलाई 1260 में गजा में एक दूसरे के आमने सामने थी। इस लड़ाई में मुसलमान बिद्रा की सेना को कुचलने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद मिस्र के ममलूकों ने चालाकी से एकर में मौजूद क्रूसेडरों से दोस्ती कर ली ताकि उन्हें दो मोर्चों पर न लड़ना पड़े और वे मंगोलों के खिलाफ उनके इलाके से होकर जंग में जा सकें। इस पर वे राजी हो गए। कुतुज क्रूसेडरों की जमीन से गुजरते हुए सीरिया को मंगोलों से आजाद कराने के लिए निकल पड़ा। एक मिलिट्री चाल का इस्तेमाल करके और अपनी सेना को चट्टानों और जंगलों में छिपाकर उसने कदबगा को हैरान कर दिया और उसे मारकर उसकी सेना को हराने में कामयाब हो गया। ये घटना एन जालूत नाम की जगह पर हुई और सीरिया में ये झटका लगने के बाद मंगोलों ने कुछ समय के लिए मिस्र पर कब्जा करने का इरादा छोड़ दिया। मंगोल हलाकू खान की 1265 में मौत हो गई, लेकिन मंगोलों और ममलूकों के बीच अशांति जारी रही। हलाकू का बेटा अबाका एक ईसाई था, उसने बाइजेंटाइन सम्राट की बेटी से शादी की और पूरब और पश्चिम में ईसाई ताकतों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने और मिस्र और लेवेंट में मुसलमानों से एन जालूत का बदला लेने की कोशिश की। हालांकि ईरान के अंदरूनी हालात ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। 1265 में उसे मजबूरी में बेबर्स को तोहफे भेजने पड़े जिसमें उससे सुलह की पेशकश रखी, लेकिन बेबर्स ने सुलह से इनकार कर दिया। एक बार फिर अबाका ने एक मैसेंजर भेजा और बेबर्स को धमकाया, उससे शांति की मांग की, लेकिन बेबर्स ने बहादुरी से कहा कि वो तब तक उसका पीछा करेगा जब तक वो अब्बासी खलीफा की सारी जमीन वापस नहीं ले लेता। 1269 में मंगोल एक बार फिर लेवेंट के लिए निकले। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक साथ हमला करने के लिए क्रूसेडर्स के साथ गठबंधन कर लिया। इस बार भी बेबर्स ने उनका पीछा लिया और मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उधर अबाका ने लेवेंट पर हमला कर दिया जिसमें उसे हार का मुंह देखना पड़ा और वो वापस लौट गया। इस बार क्रूसेडर अपने सहयोगियों के पक्ष में मैदान में उतरे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अबाका, जो बेबर्स के हाथों मिली हार से निराश हो गया था, उसने एक मैसेंजर भेजकर उससे दोस्ती की मांग की और उसी समय लेवेंट में हमला कर दिया। इसीलिए बेबर्स ने उसका ऑफर ठुकरा दिया, खासकर इसलिए क्योंकि अबाका ने उससे खुद या उसके किसी भाई को अपने पास भेजने के लिए कहा था। उसके बाद मंगोलों ने बेबर्स के इलाके पर फिर से हमला किया, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान उठाने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। 1277 में बेबर्स की मौत के बाद मंगोलों ने लेवेंट पर फिर से हमला किया, लेकिन बेबर्स के वारिस मोहम्मद बिन कलाउन ने दिखाया कि वो बेबर्स का असली वारिस है। 1281 में उसने अबाका की सेना को हराने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद अबाका की मौत हो गई। अबाका की मौत के साथ मंगोलों और ममलूकों के बीच रिश्तों में नया मोड़ आया, क्योंकि अबाका के वारिस तेकुदर ने सत्ता संभालने से पहले ही इस्लाम अपना लिया था। कलाउन को लिखे एक खत में उसने मुसलमानों के बीच शांति और एकता की इच्छा जताई और मंगोलों और ममलूकों के बीच एकता की मांग की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके बाद तेकुदर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और उसके इस्लाम स्वीकार करने से मंगोल भड़क गए और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। तेकुदर के बाद उसके भाई अरगुन ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर मुसलमानों से दुश्मनी की पॉलिसी शुरू कर दी। अरगुन के बाद सत्ता उसके बेटे गजान के हाथ में चली गई, जिसने इस्लाम अपनाने और ईसाइयों और बौद्धों का विरोध करने के बावजूद ममलूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1299 में लेवेंट पर हमला किया। इस हमले में कलाउन की सेना हार गई और गजान की सेना यरूशलम तक पहुंच गई। हालांकि कलाउन और ममलूकों के लिए इस स्थिति का सामना करना आसान नहीं था और उन्होंने जवाबी हमले की तैयारी की। 1302 में उन्होंने गजान की सेना पर हमला किया और उसे मरज अल सफर में बुरी तरह हराया। हार इतनी बुरी थी कि गजान सदमे से मर गया, लेकिन क्रूसेडर्स और मंगोलों के बीच सहयोग जारी रहा। इस एपिसोड में जैसा कि आपने सुना कैसे क्रूसेडर्स ने छठे क्रूसेड के बाद मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ने में मंगोलों और तातारों की मदद की और उनका साथ दिया।